देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध दसवां अध्याय द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 31 और 32। 31 हम केवल पढ़ेंगे। एवं विधा गदंती नाम स गिरह पुरयोषिताम निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययो हरिः। अनुवाद। हस्तिनापुर राजधानी की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर रही थीं और इस प्रकार से बातें चला रही थीं कि भगवान ने हंसते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। श्लोक संख्या 32। अजात शत्रु प्रीतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुंक्त चतुर अंगिनीम अजात शत्रु प्रीतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्य शंकितः स्नेहात्। प्रायुंक्त चतुरंगिणीम अजात शत्रु प्रीतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात्। प्रायुंक्त चतुरंगिणीम अजात शत्रु प्रीतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात्। प्रायुंक्त चतुरंगिणी अजात शत्रु प्रीतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात्। प्रायुंक्त चतुरंगिणीम् अजात शत्रुः प्रीतनाम् गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात्। प्रायुंक्त भी है। अजात शत्रु प्रीतनाम गोपी थाय मधु द्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुंक्त चतुरंगिणीम्। पिथाय मधु द्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुंक्त चतुरंगिणीम्। अजात शत्रुः प्रीतनाम् गोपीथाय मधु द्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुंक्त चतुरंगिणीम्। अजात शत्रु प्रीतनाम् गोपीथाय मधु द्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुंक्त चतुरंगिणीम्। अजात शत्रुः प्रीतनाम् गोपीथाय मधु द्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुंक्त चतुरंगिणीम्। अजात शत्रु हो जिसके कोई शत्रु न था, महाराज युधिष्ठिर, प्रीतनाम सुरक्षा सेनाएं, गोपी थाय रक्षा प्रदान करने के लिए, मधु द्विषः मधु के शत्रु श्री कृष्ण का परेभ्यः अन्यों या शत्रुओं से अंकितः भयभीत स्नेहात प्रायु स्नेह का स्नेहवश क्षमा कीजिए प्रायुंक्त संलग्न चतुरंगिणीम चतुरंगिनी सेना। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर बदला है क्या, ये चेंज किया। अनुवाद, यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तात्पर्य, घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन हैं। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रथवान शक्तिशाली तीरों के बल से, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र से भी अनेक घोड़ों तथा हाथियों से युद्ध कर सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण सबों के मित्र तथा शुभचिंतक हैं, फिर भी अनेक असुर स्वभाववश भगवान से ईर्ष्या रखते हैं। अतएव कोई उन पर आक्रमण न कर दे तो यूं ही यूं कहें कि स्नेहवश भी उन्होंने भगवान कृष्ण के अंग रक्षकों के रूप में चतुरंगिणी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण में अपनी रक्षा कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा का आज्ञोल्लंघन नहीं कर सकते थे। भगवान अपने दिव्य कौतुक में आश्रित का थोड़ी गलती है यहां पर। भगवान अपने दिव्य कौतुक में आथित का सा खेल खेलते हैं, और इस तरह कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्यवस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। भगवान तथा भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। अनुवाद को दोहराइएगा। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, और हस्तिनापुर की महिलाएं ऊपर से उनका दर्शन करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं और आपस में परस्पर उनकी बातचीत कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। और जब श्री कृष्ण निकल जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए युधिष्ठिर महाराज ये चतुरंगिनी सेना भेजते हैं, घोड़े, हाथी, रथ तथा पैदल सेना। युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पे अजात शत्रु नाम से संबोधित किया जाता है। अजात शत्रु का मतलब है अजात शत्रु, जिसके शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में युधिष्ठिर महाराज का चरित्र, उनका स्वभाव, उनके गुण ऐसे थे कि कोई भी व्यक्ति उनका शत्रु नहीं था, कोई भी व्यक्ति उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता था, वो उनका स्वभाव है। हालांकि वो एक राजा थे, एक क्षत्रिय थे, फिर भी एक साधु थे, ऋषि थे, राज ऋषि। साधु का गुण भी ऐसे ही होता है, धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो, कि धीर और अधीर दोनों तरह के लोग, अच्छे लोग और दुष्ट लोग, दोनों ही ऐसे महान भक्तों को सम्मान करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के साथ ठीक ऐसे ही था, इसलिए उनका नाम रखा गया था अजात शत्रु, क्योंकि वे कुंती महारानी के माध्यम से धर्मराज, धर्म या यमराज के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम धर्मपुत्र भी था। धर्म मतलब यमराज। साथ साथ क्योंकि वो बहुत ही धर्मपरायण थे, बड़े विद्वान थे, पुण्यवान थे, इसलिए उनका नाम धर्मराज रखा गया था। कभी भी धर्म के पथ से भ्रष्ट नहीं होते थे, विचलित नहीं होते थे। तो युधिष्ठिर का मतलब है युद्ध में स्थिर रहने वाले, युधि स्थिर, जो कभी भी युद्ध में दावाडोल नहीं होते हैं, जो भ्रमित नहीं होते हैं, युद्ध के भीतर स्थिर रहने वाले, वो हैं युधिष्ठिर। हालांकि जब युद्ध के पहले चर्चा चल रही थी कौरवों और पांडवों के बीच में, तो युधिष्ठिर महाराज को इच्छा नहीं थी युद्ध के लिए, इच्छुक नहीं थे वो। वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक समस्या का समाधान हो जाए। परंतु जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन एक एक गांव भी पांच भाइयों को देने के लिए तैयार नहीं है, तब युधिष्ठिर महाराज ने ठान लिया कि और कोई उपाय नहीं है। और जब युद्ध आरंभ हो गया तो युधिष्ठिर महाराज उसमें स्थिर रहे। युधिष्ठिर यहां पर श्री कृष्ण को भी मधु द्विषा शब्द से संबोधित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, अनंत नाम हैं, और जितने भी भगवान की लीलाएं हैं उनके सारे नाम उनकी लीलाओं से संबंधित है। भगवान के जितने भी कार्य हैं उनको लीला कहते हैं, और जैसे भी भगवान की लीला क्यों न हो, वो एक ऐसा नाम उनको लग जाता है उस लीला से संबंधित, जैसे गोपाल, गोविंद। तो उसी प्रकार से उन्होंने मधु राक्षस, मधु असुर का वध किया था। पुराणों में ऐसे कथा बताई जाती है कि दो असुर थे जिनका नाम था मधु और कैटभ, और ये भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न हुए थे जब महाभगवान विष्णु योग निद्रा में थे। और जब ये दो असुर शिवजी की हत्या करने के लिए आगे बढ़े तो भगवान विष्णु ने उन दोनों का वध किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन भी है। हर रोज सुबह विभावरी शेष मंगल आरती के समय जब हम ये भजन गाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम पूतन घातन कैटभ शातन जय दाशरथी राम, कैटभ शातन। तो हर रोज हम न केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं लेकिन कैटभ का भी स्मरण करते हैं, मधु और कैटभ का। तो देखिए, जो जिनकी हत्या भगवान करते हैं उनका भी, वो भी अमृत हो जाते हैं, उनका भी नाम सदैव भक्तों में गूंजता रहता है। तो जो भी भगवान के संपर्क में आता है वो धन्य हो जाता है। तो ये हैं श्री कृष्ण मधु द्विषा, जिन्होंने जो मधु नाम के असुर के शत्रु थे। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए सेना भेज रहे हैं। अब किन से डर था महाराज युधिष्ठिर को? अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में लाखों लाखों की संख्या में क्षत्रिय और सैनिक मारे गए थे, लेकिन फिर भी ऐसे कई राजा थे जो कि उस युद्ध में नहीं आए थे, और जो राजा मरे थे वहां युद्ध में उनके भी कई रिश्तेदार थे। तो ये सारे लोग जो हैं युधिष्ठिर महाराज और पांडवों से बहुत द्वेष करते थे, क्योंकि उनके सारे रिश्तेदार, उनके पिता, उनके भाई, उनके लड़के, उनके तरह तरह के सगे संबंधी वगैरह वो उस युद्ध में मारे गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे ये सारे जो राजा हैं उनको हमें वश में तो करना है। ठीक है, राजसूय यज्ञ तो हमने कर लिया पहले, अब हमने अश्वमेध यज्ञ भी कर लिया, इन सबको वश में कर लिया है, परंतु फिर भी ये द्वेष की भावना शायद रख रहे होंगे। इसलिए ये सारे लोग किसी भी समय कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं अगर कृष्ण अकेले चले गए हस्तिनापुर से द्वारका, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि पांडवों की शक्ति केवल कृष्ण थे। एकमात्र कृष्ण की पांडवों के साथ देने की वजह से पांडव विजयी हुए, अन्यथा पांडवों को विजय प्राप्त करना ये असंभव था, क्योंकि कौरवों के बीच में ऐसे योद्धा थे जैसे भीष्म, द्रोण, कृपा, कर्ण आदि, जिनका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। और अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम आदि भी, हालांकि वो भी बड़े शूर वीर और शक्तिशाली थे, लेकिन भीष्म द्रोण का सामना करने में उनमें सामर्थ्य नहीं था, लेकिन फिर भी पांडव विजयी हुए। पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी वर्ग थे, कौरवों के साथ 11 थे, फिर भी पांडव विजयी हुए। तो सभी लोग जानते थे कि इसका कारण केवल एक है और वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने उनको शक्ति दी है, श्री कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की है, इसलिए विजयी हुए हैं। साथ साथ जिनकी श्रद्धा नहीं थी कि ये श्री कृष्ण भगवान हैं, वो सोचते थे ये श्री कृष्ण बड़े चालाक हैं, चतुर हैं, उन्होंने बहुत छल कपट किया है युद्ध में, तरह तरह के छल करके उन्होंने अलग अलग महान योद्धाओं का की हत्या करा दी है, अन्यथा इनकी हत्या करना ये संभव नहीं था। तो ये श्री कृष्ण ही हमारे दुख का कारण है। तो युधिष्ठिर महाराज जान रहे थे कि शायद ऐसे कई राजा सोच रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ ये चतुरंगिनी सेना भेजी। चतुरंगिनी सेना भेजना मतलब अपना सब कुछ भेज देना, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना, सब कुछ। तो ये एक मर्यादा है कि जब कोई सम्माननीय व्यक्ति हमारे घर में आता है, हमारे स्थान में आता है एक अतिथि बनकर, और जब वो जाने के लिए तैयार होता है तो उसको बाहर तक छोड़ना होता है, बाहर तक जाकर उनके साथ में जाना होता है। ऐसे नहीं कि हम घर के अंदर ही बैठे रहें और उनको भेज दें। अगर वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो घर के द्वार के तक हम जाएंगे, या हो सकता है कि और कहीं और थोड़ी दूरी तक जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज, पांडव भी उनके साथ आगे तक गए और साथ साथ अपनी सेना तक भी को भी भेज दिए। कभी कभी हम भक्तों को भी पता है, अनुभव है, कि हम किसी के घर में जाते हैं कोई सत्संग वगैरह करने के लिए, फिर वो व्यक्ति उनकी गाड़ी में हमको आश्रम तक पहुंचा देते हैं, है ना? यानी आप आश्रम हमारे गाड़ी में बैठिए, आपको हम पहुंचा देंगे आश्रम। एक सम्मान देने का तरीका है। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे थे। अब ये सवाल उठता है स्वाभाविक रूप से कि क्या युधिष्ठिर महाराज इस बात को नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण कौन हैं? क्या श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज की सेना की आवश्यकता थी रक्षा के लिए? क्या भगवान कृष्ण अपनी ही रक्षा करने में के लिए समर्थ नहीं थे? अवश्य युधिष्ठिर महाराज इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध में ही एक अन्य स्थान में युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से कहते हैं, मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय च भवाय च आस्ते यद कुल अंबोधौ आद्योनंत सखह पुमान। वो कहते हैं कि ये आवाज बंद कर सकते हैं क्या, माइक का क्या है, हाँ? अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे। तो वो कहते हैं हरे कृष्ण, तो महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, भगवान कृष्ण का याद करते हुए, कि वही भगवान श्री कृष्ण जो कि हमारे साथ इतने समय तक रहे, ये कि सारे जगत का वो कल्याण करें, सारे जगत की रक्षा के लिए और सारे जगत की से बनकर द्वारका में निवास करते हैं, केवल जगत के कल्याण के लिए, जगत के प्रगति के लिए और जगत की रक्षा के लिए। समय तक नहीं आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो जाते हैं और भीमसेन से अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं और भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए ये संशय करते हैं कि क्या ऐसे तो नहीं हुआ है कि श्री कृष्ण स्वधाम लौट के चले गए। और फिर वो कहते हैं, यद बाहु दंड अबुद्ध्या अनुजीवन यदु प्रवीर ही अकुतो भय मुहुः। वो कहते हैं यदु प्रवीर, प्रवीर मतलब जो यदुकुल के वीर सदस्य हैं, शूरवीर हैं, वो अकुतो भय मुह हो हमेशा निर्भयता के अवस्था में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यद बाहु दंड अभ्युदय अनुजीविन, भगवान श्री कृष्ण के बाहु दंड उनके भुजाओं के संरक्षण में वो अनुजीविन सदा जीते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर हैं, अपनी भुजाओं से यदुकुल की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए बड़े निर्भय अवस्था में यदुकुल के सदस्य जी रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भी अन्य जगह कहते हैं उस प्रसिद्ध श्लोक में, जयति जननिवास देवकी जन्मवादो यदुकुल परिषद स्वैर्दोर्भिर अस्यन्न धर्मम्। ये श्री कृष्ण जननिवास हैं, जनों के बीच में निवास करते हैं, मानो को वो भी एक साधारण जन है, एक साधारण व्यक्ति है। और इसका अर्थ ये भी होता है कि सारे जनों का, सारे लोगों का वो निवास स्थान है, वो आश्रय है। तो जो व्यक्ति सारे लोगों का आश्रय है, वो आज सारे लोगों का आश्रय लेकर लोगों के बीच में एक साधारण व्यक्ति की तरह जी रहे हैं। यदुवर परिषद, यदुकुल के सदस्यों के पार्षद, उनके मित्र रिश्तेदार बनकर उनके बीच में रह रहे हैं। साथ साथ में स्वैर दौरभीर अस्यन्न धर्मम, कि अपने मजबूत भुजाओं के द्वारा वो सारे जगत की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, उनको दंड देते हैं, और जो अच्छे हैं, जो पुण्यवान लोग हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कृष्ण यदुकुल की रक्षा ऐसे करते हैं, और ये यदुकुल के सदस्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी बड़े बड़े शूरवीर सैनिक हैं, योद्धा हैं, तो ये लोग श्री कृष्ण के आश्रय के ऊपर निर्भर हैं, तो फिर श्री कृष्ण को भले एक सेना की क्या आवश्यकता है। युधिष्ठिर महाराज ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पांडव वो भी पूरी तरह से श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर थे। युधिष्ठिर महाराज खुद कहते हैं कि केवल श्री कृष्ण की कृपा की वजह से हमारे लिए ये राज मिलना, ऐश्वर्य प्राप्त होना, प्रजा को हमारे वश में रख पाना, हमारे लिए सुंदर रानियों को प्राप्त करना और हर दृष्टि से विजय प्राप्त करना हमारे शत्रुओं के ऊपर, ये सब संभव हुआ केवल कृष्ण की वजह से। क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रही, इसलिए ये सारे चीजें हमारे लिए संभव हुए, अन्यथा ये संभव नहीं था। युधिष्ठिर महाराज ये भी जानते हैं कि जब से वो बच्चे थे और आज तक केवल कृष्ण ही हैं जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। जब कुंती महारानी ने श्री कृष्ण की स्तुति की तो उस समय युधिष्ठिर महाराज भी तो थे वहां। युधिष्ठिर महाराज ने कुंती महारानी की स्तुति जो है अच्छी तरह से सुन ली, और कुंती महारानी प्रार्थना करती है श्री कृष्ण से कि कितने सारे कष्टों से, संकटों से हम बीते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे, अर्थात पांडव जब छोटे थे, तो दुर्योधन ने भीम को और अन्यों को भी विष खिलाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे बच्चे बच गए। फिर हम सबको लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयास किया कौरवों ने, फिर भी हम बच गए। हमारा सब कुछ उन्होंने छीन लिया, और असत सभा में हमारे बहू के प्रति बहुत बड़ा अपमान हुआ। हम जब जंगल में गए, वनवास में गए, तो कई राक्षस वहां पर आए, उनका सामना करना पड़ा, कई तरह तरह के कष्ट वहां पर भी हुए। जैसे दुर्वासा मुनि आए और कोई भोजन नहीं था हमारे पास उनको और उनके 10,000 शिष्यों को खिलाने के लिए। उसके बाद जब युद्ध हुआ तो युद्ध में भी इतने बड़े बड़े सैनिक थे जैसे भीष्म, द्रोण, कृपा, कर्ण इत्यादि, इन सब से मेरे बच्चे बच गए, और बचे ही नहीं बल्कि वो विजयी हुए। इन सारे कष्टों के अंदर रहते हुए हम जानते हैं कि केवल आप ही हैं जिन्होंने हमारी रक्षा की है। आपकी रक्षा की वजह से हम इन सारे विकट परिस्थितियों के पार हो पाए। तो युधिष्ठिर महाराज इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज की सेना की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों को कृष्ण के प्रति रक्षा थी, कृष्ण की रक्षा की आवश्यकता थी। कुंती महारानी श्री कृष्ण से कहती हैं कि केवल आपकी कृपा से ये सब हो गया, और हम आपके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हैं, निर्भर हैं, और इस समय जबकि सारे द्वेषी शत्रु हमारे इर्द गिर्द हैं, इसी समय आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा। दूसरे शब्दों में रक्षा के विषय में पांडवों को कृष्ण की उपस्थिति की आवश्यकता थी, कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज की सेना की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इतना सब होते हुए भी और इतना सब जानते हुए भी युधिष्ठिर महाराज ने चतुरंगिनी सेना भेजी कृष्ण भगवान के साथ में, तो ऐसे क्यों किया, यहां इसका उत्तर है। परेभ्य शंकित, मतलब परे जो शत्रु हैं उनके भय से तो भेजा, परंतु मुख्य शब्द है स्नेहात, प्रेम से, क्योंकि वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे इसलिए उनके लिए भय था कि कहीं कोई कुछ कर न दे। हालांकि युधिष्ठिर महाराज को सारा ज्ञान था, कृष्ण तत्व का ज्ञान था, लेकिन फिर भी स्नेह उनके हृदय में इतना तीव्र था कि वो उनके तत्व ज्ञान से कहीं ज्यादा अधिक था। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं, उदाहरण देते हैं माता यशोदा का, कि माता यशोदा श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दृष्टि रखते थे कि अगर मैं कृष्ण की रक्षा नहीं करूंगी तो कृष्ण की बहुत हानि हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा, हो सकता है उसकी हत्या कोई कर दे, उसकी मृत्यु हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, कोई घायल हो जाए। माता यशोदा ये नहीं सोचती थी कि कृष्ण अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरह से काबिल है, वो हमेशा श्री कृष्ण को एक साधारण बच्चा ही समझती थी कि ये मेरा छोटा सा बच्चा है जो बिल्कुल निस्सहाय है और मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। यही माता यशोदा और नंद महाराज का भाव था और श्री कृष्ण को ऐसा भाव अच्छा लगता है, इसीलिए उन्होंने इस प्रेम का, इस रस का आदान प्रदान किया अपने माता पिता के साथ। उन्होंने ये नहीं कहा अपने माता से, अरे मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं तो अपने आप को संभाल सकता हूं, तुम क्यों डरती हो, मैं कर लूंगा। प्रेम में वो कहते थे ऐसे, जब माता यशोदा डरती थी कृष्ण को बाहर अकेले भेजने में जंगल में, तो कृष्ण कहते थे अब मैं बड़ा हो रहा हूं, अब मैं बड़े गायों का भी देखभाल कर सकता हूं, केवल बछड़ों का देखभाल क्यों करना है, अब मैं बड़ा लड़का हो गया हूं। तो माता यशोदा डर गई, नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े बड़े गाय हैं, उनके बड़े सिंह होते हैं, कुछ इधर उधर कर दे तो क्या होगा, तुम हो इतने छोटे से नन्हे से, तुम बड़े गायों को संभाल नहीं पाओगे, बछड़े ही सही तुम्हारे लिए। तो कृष्ण कहे नहीं नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं तो शक्तिशाली हूं, देखो मेरी कितनी शक्ति है। लेकिन माता यशोदा तो इसको कृष्ण के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी, अरे तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है हमें मालूम है। लेकिन जब नंद बाबा अन्य बड़े गोपों के पास माता श्री कृष्ण गए तो उस समय उन्होंने किसी न किसी तरह से उनको समझा दिया और वो मान गए। फिर पौगंड अवस्था को प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण बड़े गायों को बाहर चराने के लिए ले गए। तो हालांकि श्री कृष्ण कभी कभी कहते भी थे कि ठीक है मैं कर सकता हूं, वो भी प्रेम से कहते थे, माता यशोदा मानती नहीं थी। माता यशोदा के मन में केवल एक विचार था कि मुझे तो 24 घंटे इस बच्चे का देखभाल करना चाहिए। आप तो जानते हैं कि छोटे बच्चे होते हमेशा खतरे में होते हैं, वो क्या करें अगले क्षण पता नहीं होता, कोई चाकू पड़ा है वहां पर, चाकू उठा के कुछ कर लें, कहीं आग जल रहा है आग में कहीं हाथ कर दें, कहीं से गिर जाए, किसी ऊपर चढ़े, खिड़की में चढ़े, कुछ हो जाए। हमेशा जो माता पिता होते हैं वो चिंता में रहते हैं कि छोटा बच्चा कहाँ जाए, क्या करेगा, इसलिए 24 घंटे की ड्यूटी होती है। और ब्रज में तो देहात था उस समय, तो देहात में वहां पर माता यशोदा अन्य गोपियां डरती थी कि अब एक गाय है, सिंह कहीं लग ना जाए गाय के सिंह को, यह बंदर हैं या कुत्ते हैं, ये कहीं काट ना दे हमारे छोटे बच्चे को, कहीं आग ना लग जाए, और यहाँ पर जमीन में कांटे हैं वो कहीं चुभ ना जाए। इस प्रकार से सदैव चिंतित रहती थी माता यशोदा और वरिष्ठ गोपियां कृष्ण के बारे में। अगर उनको कोई कहता कि कृष्ण अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हैं तो कभी भी विश्वास नहीं करती। तो ये है उनका वात्सल्य भाव। जब श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, सारे ब्रजवासी वहां मैदान में चले आए, पूतना का विराट शरीर उन्होंने देखा 8 मील लंबा, और उसके ऊपर श्री कृष्ण आराम से खेल रहे हैं मानो कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है, कोई घटना हुई ही नहीं है। फिर श्री कृष्ण को नीचे लाए और माता यशोदा सोचने लगी कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज नहीं हुई, बहुत खतरा है यहाँ पर, तो कृष्ण की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले गौमूत्र से श्री कृष्ण को नहलाया, और फिर गोखुर के जो रज हैं, जब गाय चलते हैं तो उनके पैरों से जो रज जो धूली उड़ती है वो धूली जो है बहुत शुभ मानी जाती है। तो उस धूली का लेप जो है श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर लगाया। तो जिन चीजों को हम गंदा मानते हैं आजकल आधुनिक जमाने में, उन चीजों को माता यशोदा पवित्र मानती थी। यह है वैदिक संस्कृति, इतना पवित्र कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उन चीजों से नहलाया जाता था, उनसे लेप लगाया जाता था। तो उसके बाद फिर माता यशोदा ने गोबर लिया और गोबर से उनके अलग अलग शरीर के अंगों में तिलक लगाया, जैसे हम लोग गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं शरीर के 12 स्थानों में। हम जब तिलक लगाते हैं तो भगवान के एक नाम को पुकारते हैं, ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः कहते हैं ताकि हम केशव जो है हमारे ललाट की रक्षा करें। ओम नारायणाय नमः, भगवान नारायण जो है हमारे उदर की रक्षा करे। ओम माधवाय नमः, माधव जो है हमारे वक्षस्थल की रक्षा करें। तो हमारे शरीर के अलग अलग स्थानों में हम भगवान का नाम कहकर तिलक लगाते हैं, तो उसी इसको कवच कहते हैं रक्षा के लिए। तो माता यशोदा भी इसी तरह से मंत्र कवच गोबर से लगा रही थी कृष्ण के शरीर के ऊपर, और तरह तरह के अलग अलग कृष्ण के दिव्य शरीर के का स्पर्श करके, गोबर का स्पर्श करके भगवान के अलग अलग नामों को पुकार रही थी कि अच्युत, जनार्दन, त्रिविक्रम, उरुक्रम, उरुगाय, आप कृष्ण की इस भाग की रक्षा कीजिए, आप कृष्ण की उस भाग की रक्षा कीजिए। और ऐसा सब करने के बाद फिर जो है गोपुच्छ से बनाया हुआ एक चामर जैसा होता है पंख, उससे फिर अलग अलग घुमा फिरा के फिर रक्षा के लिए सब माता यशोदा और अन्य गोपियां कर रही थी। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां पर तात्पर्य में समझाते हैं कि देखो वैदिक जमाने में सब कुछ कितना अच्छा था और गाय कितनी मूल्यवान है, कि गाय से न केवल हमें दूध मिलता है, गोबर मिलता है, न केवल बैल खेती में काम कर सकता है, परंतु गाय जो है से हम संरक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। गोबर, गोमूत्र, गोधूली से हम अपनी रक्षा करा सकते हैं। तो इस प्रकार से माता यशोदा हालांकि कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गई थी, लेकिन फिर भी कैसे रक्षा प्रदान करना चाहिए गोबर, गोमूत्र, गोधूली से, वो अच्छी तरह से जानती थी। जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो उनको उनके पास थी। आजकल की व्यर्थ शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो माता यशोदा और अन्य गोपियों ने ऐसे पूरी तरह से कृष्ण की रक्षा करके फिर वो संतुष्ट हुए कि ठीक है, अब भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे। कृष्ण भगवान ने अच्छी तरह से इसको स्वीकार किया। आगे चल के जब तृणावर्त यानी शकटासुर का वध किया कृष्ण भगवान ने, तो सारे बच्चे कहने लगे, हाँ हमने देखा, हमारी आंखों से हमने देखा कि कृष्ण यहां पर लेटा हुआ था, उसने एक लात मार दिया और सारा जो ये शकट है, ये लाड़ी, वो सब गिर गया, सारे जो बर्तन वगैरह सब गिर गए। तो ब्रजवासी सोच रहे थे कि ये तो बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, ये इतना मजबूत है, ये तो कैसे गिर सकता है, और अगर गिरे भी ये सारी चीजें, कृष्ण को बिल्कुल स्पर्श नहीं किए, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर नंद महाराज ने तरह तरह के ब्राह्मणों को बुलाया कि आप थोड़े यज्ञ कीजिए। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, कोई मंत्रों का उच्चारण कीजिए मेरे बच्चे की रक्षा के लिए। जब तृणावर्त का वध कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने और उस भयंकर असुर को देखा नीचे जमीन के ऊपर और कृष्ण उनके ऊपर खेल रहे हैं, तो उस समय नंद महाराज ने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे ने इसका वध किया है। वो सोचने लगे कि देखो भगवान बड़े कृपालु हैं, जो पाप करते हैं उनको पापों का फल मिलता ही है, जो पापी लोग हैं अपने पाप के बोझ से ही मरते हैं, तो ये राक्षस ऐसे ही मर गया, और मेरा बच्चा जो है वो तो बहुत मासूम है, शुद्ध है, ठाकुर जी का भक्त है, तो भक्त लोगों की रक्षा हमेशा भगवान करते हैं। हाँ बात तो सही है, लेकिन कृष्ण तो भगवान है, वो तो केवल भक्त नहीं है। और वैसे हम समझते हैं हे गोपगण कि शायद कृष्ण के बचने का सही कारण है कि हम सब ने हमारे पूर्व जन्मों में बहुत तपस्या की थी, बहुत हमने दान वगैरह किए थे, बहुत ठाकुर जी की सेवा की थी, भजन किया था हमने, और इसका फल हमें आज मिल रहा है कि हमारा बच्चा बच गया। तो वो सोच रहे थे कि कृष्ण के बचने का कारण वो है कि वो रक्षा दे रहे हैं श्री कृष्ण को, और इस भावना से उनको आनंद आ रहा था। और आश्चर्य की बात यह है कि श्री कृष्ण जो सारे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, जब कोई और ऐसी रक्षा की भावना उनके प्रति रखता है तो कृष्ण बहुत ही प्रफुल्लित आनंदित हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि कोई मेरी रक्षा कर रहा है। और जो कृष्ण की रक्षा इस भावना से करता है तो कृष्ण पूरी तरह से उसकी रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसे कहा जाता है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म का पालन करके, तो धर्म ही उसकी रक्षा करता है। तो उसी प्रकार से जो श्री कृष्ण के प्रति ऐसी भावना रखते हैं कि हम श्री कृष्ण की रक्षा करेंगे तो कृष्ण अवश्य उनकी रक्षा करते हैं। कृष्ण भक्ति में दो भावना है, एक है ये कहना कि मैं कृष्ण का हूं, तव अस्मि, मैं आपका हूं। ये बहुत अच्छी बात है, ये भावना तो सब में होनी चाहिए। लेकिन ब्रजवासियों का भाव क्या था? कृष्ण मेरे हैं, हम कृष्ण के नहीं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण हमारी संपत्ति है। तो जब और भी निकट हो जाता है भक्त, उसकी भक्ति और भी तीव्र हो जाती है वृंदावन के भाव में विशेष करके, तो भक्त ऐसा सोचते हैं। तो यशोदा माता, नंद महाराज आदि श्री कृष्ण को अपनी संपत्ति समझते थे जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, कि अगर श्री कृष्ण की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर कृष्ण का क्या होगा। तो युधिष्ठिर महाराज वो भगवान के भाई हैं। युधिष्ठिर महाराज की मां माता कुंती वो कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, तो भाई बने वो। लेकिन उम्र में युधिष्ठिर महाराज थोड़े बड़े थे कृष्ण से, और जो उम्र में बड़ा होता है व्यक्ति वो पिता तुल्य भी होता है। जैसे बलराम कृष्ण के साथ जाते थे वन में और तरह तरह के लीला करते थे वहां कृष्ण के साथ सखा भाव में, लेकिन कभी कभी बलराम जी के अंदर वात्सल्य भाव भी उत्पन्न होता था कृष्ण की रक्षा के लिए। अरे कृष्ण वहां नहीं जाना, देखो वहां खतरा है, नहीं जाना वहां। जैसा बड़ा भाई कभी छोटे भाई को बोलता है या पिता कभी बच्चे को बोलता है कि वहां नहीं जाना, वहां खतरा है, उसके प्रति चिंतित होता है, रक्षा की भावना रखता है। तो बलराम जी की भावना भी कभी कभी ऐसे हुआ करती थी। ठीक उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, तो एक दृष्टि से एक दास्य भाव, एक सख्य भाव है, लेकिन इसमें भी एक वात्सल्य भाव मिला हुआ है, क्योंकि उम्र में बड़े हैं और ये प्रेम भी है उनको, अरे कि श्री कृष्ण के साथ क्या होगा, स्नेहात। तो इतना स्नेह था उनको कृष्ण के प्रति कि वो स्नेह जो है उनको तत्व ज्ञान, उनके तत्व ज्ञान को ढक रहा था। इसलिए वो सोचने लगे कि अरे क्या होगा, वो भूल गए उस समय कि कृष्ण पूरी तरह से समर्थ हैं अपनी रक्षा करने के लिए, और अपनी चतुरंगिनी सेना जो है उनके साथ में उन्होंने भेज दिया। तो आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। कैटभ, कैटभ और मधु दो असुर थे जिनका वध भगवान विष्णु ने किया, जबकि वो शिवजी की हत्या करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो भगवान विष्णु ने वध कर दिया उनका। ठीक है, हाँ जी, ब्रजवासियों के चरण चिन्हों में चल के प्रभुपाद जी ने हमको सिखलाया है, उन्होंने जो फॉर्मूला हमको बताया है बस उसी के अनुसार हमें चलते रहना है। कोई नई बात नहीं है, वही चीजें रोज करते रहना है हमको, वही चीजें, रोज सुबह उठना, मंगल आरती आना, वही जप करना, वही फिर भागवत सुनना, वही प्रसाद लेना, वही भक्तों का सेवा करना, वही चीज बस रोज 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 करते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। एक ही बात है ना, विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो अर्जुन तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वही कृष्ण हैं जो कि विष्णु रूप में आते हैं, है ना। तो विष्णु और कृष्ण में तो कोई अंतर नहीं है। हम अपने आप को क्या वैष्णव कहते हैं ना, हम लोग वैष्णव हैं, तो वैष्णव विष्णु भक्त, तो विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, एक ही है, कृष्ण ही है वो। गोलोक में किसकी पूजा होती है, भक्तों की होती है, कृष्ण भक्तों की होती है पूजा, कृष्ण करते हैं। वहां कोई पूजा नहीं है, वहां केवल लीला है, आनंद है, बस खेल है वहां पर, आनंद ही आनंद। ये विशेष चीजें हैं जो यहां पर हो रही हैं, हम सबको सिखलाने के लिए कि वास्तव में वृंदावन के निवासियों का भाव कैसा था, उनकी भक्ति कितनी तीव्र थी, ये सब सिखलाने के लिए। इन लीलाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, भक्ति रस के तत्व के बारे में हमें बहुत कुछ समझ में आता है। नहीं, वो तो हैं क्षत्रिय ना, युधिष्ठिर महाराज, तो उनको क्षत्रिय का धर्म निभाना है, अन्याय के खिलाफ उनको कार्य करना है, तो उनकी भावना में, उनके हृदय में कभी दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं हुआ करती थी। वो किसी व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं मानते थे, भले दुर्योधन जैसे व्यक्ति उनको शत्रु मान रहे हों, उनसे ईर्ष्या कर रहे हों, परंतु युधिष्ठिर महाराज कभी ऐसी भावना नहीं रखते थे। वो उनको सुयोधन बुलाते थे कभी कभी, हालांकि दुर्योधन शब्द का अर्थ भी बुरा नहीं है। दुर्योधन, जिसके साथ युद्ध करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल, मतलब जो इतना शक्तिशाली है कि उसके खिलाफ युद्ध नहीं किया जा सकता। तो युधिष्ठिर महाराज कभी द्वेष नहीं करते थे। धर्म युद्ध लड़ा, हाँ, एक कर्तव्य के रूप से क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ते हैं। हाँ, जब युद्ध होता है तो अवश्य उसको मानना पड़ता, नहीं तो वो तीर कैसे चलाएगा। अर्जुन तो हरि बोल कह के तो तीर नहीं चला सकता था, उसको तो बड़ा द्वेष भावना, गुस्सा होके ही युद्ध करना पड़ेगा, है ना। इसलिए क्षत्रिय धर्म ये होता है कि जब लड़ते हैं तो एक दूसरे को ललकारते हैं, एक दूसरे को बहुत गाली गलौज करते हैं, ताकि ऐसे भड़क जाए सामने वाला आदमी कि युद्ध करे। एक दूसरे को बहुत गुस्सा करते थे आमने सामने, एक दूसरे की निंदा करते थे, और फिर भीषण युद्ध होता था उस समय। हाँ, हाँ, लेकिन फिर भी वो पांडवों के प्रमुख हैं और युद्ध जब कर रहे हैं तो हमारे शत्रुओं के वो नेता हैं, लीडर हैं। तो शत्रुओं का जो नेता जो होता है, उसको शत्रु के समान ही युद्ध करना चाहिए। इसलिए दुर्योधन ने उनके खिलाफ युद्ध भी किया। और जब युद्ध हो रहा था तो युधिष्ठिर को एकत्र अलग से एक जगह कोने में लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेटेजी बनाए, है कि नहीं? तो हाँ, लेकिन धर्मराज है, मानते थे, लेकिन आखिर में जब समय आया तो युद्ध तो किया ना। दुर्योधन को अपना जो हक है वो नहीं दिया। जो युधिष्ठिर के साथ द्वेष नहीं करते तो युधिष्ठिर का राज जो है लौटा देते, लेकिन युधिष्ठिर से द्वेष करते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपना राज्य चाहिए था, उनको राज्य का भोग निजी स्वतः चाहिए था। इस दृष्टि से हम कहते हैं कि दुर्योधन जो है पांडवों से बहुत द्वेष करता था, हालांकि उनका द्वेष विशेष करके भीम और अर्जुन के प्रति था, और खास करके भीम, दुर्योधन का द्वेष। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। Thank you.